वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
दोस्तों, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं मरियम मेहर दादी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं अहमद अब्बास। आइए पहले सूरह सात की आयत संख्या 26 की तिलावत सुनते हैं।
या दाऊद इन्ना जअलनाक खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب।
इस आयत का अनुवाद है, ऐ दाऊद, हमने धरती में तुम्हें खलीफा बनाया है, अतः तुम लोगों के बीच हक के साथ फैसला करना और अपनी इच्छा का अनुपालन न करना कि वो तुम्हें अल्लाह के मार्ग से भटका दे। जो लोग अल्लाह के मार्ग से भटकते हैं, निश्चय ही उनके लिए कठोर दंड है, क्योंकि वे हिसाब अर्थात कयामत के दिन को भूल बैठे हैं।
पिछले कार्यक्रम में हमने बताया कि हजरत दाऊद के साथ एक घटना हुई जिससे वो समझ गए कि दो भाइयों के बीच फैसला करने में उन्होंने पूरी तवज्जो से काम नहीं लिया और फैसला सुनाने में जल्दबाजी कर दी। इसीलिए उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और माफ़ी मांगी। अल्लाह की बारगाह में हजरत दाऊद के इस अंदाज की वजह से अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनका वही उच्च स्थान सुरक्षित रहा।
ये आयत कहती है कि ऐ दाऊद, हमने आपको पैगंबरी का दायित्व दिया है, तो दरअसल आपको धरती पर अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, तो आप हमारी शिक्षाओं के अनुसार अमल कीजिए। आपका अमल ईश्वरीय विशेषताओं का दर्पण होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिए कि लोगों के बीच फैसला करते समय हक और न्याय मद्देनजर रहे। इच्छाओं के जाल में न फंसीए। अपनी पसंद को कभी हक और न्याय पर प्राथमिकता न दीजिए, क्योंकि इस तरह आप सत्य के रास्ते से, जो अल्लाह का रास्ता है, भटक सकते हैं। जाहिर है कि अल्लाह के पैगंबर हर गुनाह और पाप से दूर होते हैं और कभी भी अल्लाह के मार्ग से भटकते नहीं, लेकिन इस आयत से समझा जा सकता है कि मासूम होने का ये अर्थ नहीं है कि पैगंबरों के पास अपनी इच्छा और मर्जी से काम करने का अख्तियार ही नहीं होता। वो अन्य इंसानों की तरह अपनी इच्छा और मन के इशारे पर कोई काम कर सकते हैं, इसीलिए अल्लाह उन्हें सचेत करता है कि अगर वो होशियार न रहेंगे तो संभव है कि अल्लाह के रास्ते के बजाय अपनी इच्छाओं के रास्ते पर चल पड़े और नतीजे में अल्लाह के प्रकोप का शिकार बने।
पिछली आयतों के क्रम में यह आयत लोगों के बीच फैसला करने के विषय के बारे में बात करती है। इस आधार पर नतीजा लिया जा सकता है कि जो भी ज़मीन पर शासन कर रहा है, समाज के सारे मामलों में न्याय के आधार पर काम करे। अलबत्ता इसके लिए ज़रूरी है कि वो शासक अल्लाह के बनाए हुए नियमों से पूरी तरह अवगत हो, ताकि न्याय के अनुसार फैसला कर सके और उसके आधार पर काम करे। अपनी पसंद और इच्छा के रुझान के हिसाब से काम न करे, क्योंकि ये किया तो लोगों के अधिकार शक्तिशाली लोगों और शासकों की इच्छाओं की भेंट चढ़ जाएंगे।
इस आयत से हमने सीखा, धर्म राजनीति से अलग नहीं है। पैगंबरों की एक जिम्मेदारी लोगों पर शासन करना और सामाजिक मामलों का संचालन है। हालांकि बहुत कम पैगंबरों के लिए सरकार और शासन की स्थापना के लिए अनुकूल हालात पैदा हुए।
न्यायिक कानूनों और आदेशों का आधार व पैमाना हक होना चाहिए, शासकों या काजी की इच्छा और मर्जी नहीं।
अगर इच्छा को आधार बनाया गया तो सत्य और हक हाशिए पर चला जाएगा, क्योंकि इच्छा के अनुसरण का मतलब है हक व सत्य के मार्ग से भटक जाना। यही वजह है कि महान इंसान हमेशा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं ताकि जीवन के विभिन्न मामलों में हक और सत्य के आधार पर काम करें।
आइए अब सूरे 7 की आयत संख्या 27 और 28 की तिलावत सुनते हैं।
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ।
इन आयतों का अनुवाद है, हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उनके बीच है व्यर्थ नहीं पैदा किया, यह तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने इनकार किया, अतः ऐसे इनकार करने वालों की बड़ी बर्बादी है जहन्नम की आग से। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके समान कर देंगे जो धरती में बिगाड़ पैदा करते हैं, या डर रखने वालों को हम खुले पापियों जैसा कर देंगे?
इससे पहले की आयत में अल्लाह ने हजरत दाऊद से कहा कि ज़मीन में सत्य और हक को मद्देनज़र रखते हुए राज और फैसला करो, क्योंकि तुम ज़मीन में हमारे उत्तराधिकारी हो। इसके आगे अब इन आयतों में अल्लाह कहता है कि हमने तो दुनिया को हक और सत्य के आधार पर पैदा किया है, किसी असत्य के लिए उसमें गुंजाइश नहीं बनाई है, तो ज़मीन पर सत्य का ही राज होना चाहिए। अलबत्ता जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के वजूद और उसके द्वारा दुनिया का संचालन होने का इनकार करते हैं, उनकी ये धारणा है कि ब्रह्मांड को बगैर उद्देश्य और बगैर किसी कार्यक्रम के पैदा कर दिया गया है और इसका कोई स्पष्ट और निश्चित भविष्य नहीं है। लेकिन जब वो जहन्नम की आग में गिरेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उनकी धारणा जड़ से गलत है। इन आयतों में आगे ये कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड सत्य और हक पर केंद्रित है। यही नहीं, सजा या इनाम देने की व्यवस्था भी न्याय और सत्य पर केंद्रित रखी गई है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग अल्लाह की नज़र में एक समान नहीं हैं और उनसे एक जैसा बर्ताव नहीं रखता।
स्वाभाविक है कि जो लोग अल्लाह को अपना मालिक और पैदा करने वाला मानते हैं, क़यामत पर यकीन रखते हैं, धरती पर अल्लाह और क़यामत का इनकार करने वालों के तौर तरीक़े से उनकी शैली अलग है। पहले समूह के लोग समाज की भलाई और सुधार के लिए काम करते हैं और दूसरे समूह के लोग गड़बड़ और बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। पहले समूह के लोग अल्लाह की ओर से निर्धारित नियमों और पैमाने के अनुसार काम करते हैं और दूसरे समूह के लोग भौतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर काम करते हैं। पहले समूह के इस खास दृष्टिकोण का नतीजा उनकी पवित्रता और तकवा है और दूसरे समूह के खास दृष्टिकोण का नतीजा समाज में बिगाड़ और फसाद का प्रसार है।
इन आयतों से हमने सीखा, धार्मिक दृष्टिकोण में हर चीज़ की पैदाइश का खास लक्ष्य और उद्देश्य है, जबकि गैर धार्मिक विचारधारा का मानना है कि चीज़ों को उद्देश्यहीन पैदा कर दिया गया है और इनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।
चूंकि पूरा ब्रह्मांड सत्य और हक पर केंद्रित है, इसलिए ज़रूरी है कि मानव समाजों में स्थापित होने वाले सिस्टम और नियम भी सत्य और हक पर केंद्रित हों ताकि दोनों में तालमेल रहे।
हक और सत्य की मांग ये है कि दुनिया और परलोक में दोनों जगह न्याय हो, समाज में अच्छों और बुरों को एक नज़र से देखना न्याय से मेल नहीं खाता।
अल्लाह के आदेशों की अवमानना से ज़मीन में बिगाड़ और गड़बड़ी फैलती है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।